ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
तब भगवान ब्रह्मा ने देखा कि
कि काल स्वभाव संस्कार काम कर्म तथा गुण ये सभी अपनी स्वतंत्रता खोकर पूर्णतया भगवान की शक्ति के अधीन होकर स्वरूप धारण किए हुए थे और उन विष्णु मूर्तियों की पूजा कर रहे थे। तात्पर्य केवल विष्णु को स्वतंत्रता प्राप्त है। यदि हम में यह चेतना जागृत हो सके तो हम यथार्थ में कृष्ण भावनावित है। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि कृष्ण ही एकमात्र परम स्वामी है और अन्य हरेक व्यक्ति उनका दास है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सर्वभृत्य। चाहे कोई नारायण हो या भगवान शिव, प्रत्येक जीव कृष्ण के अधीन है। यहाँ तक कि बलदेव भी कृष्ण के अधीन है, यह तथ्य है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सर्वभृत्य, यारे ऐछे नचाए से तेछे करे नृत्य। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि कोई भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि हर कोई कृष्ण का अंश है और कृष्ण की इच्छा अनुसार काम करता और चलता फिरता है। यही समझ यह चेतना कृष्ण भावना भावित है। यस्तु नारायणं देव ब्रह्म रुद्रादि देवतः समन्त्वे नैव विक्षेत न पाषण्डी भवेत् ध्रुवम्। जो व्यक्ति ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को नारायण के समक्ष मानता है वह निश्चित रूप से अपराधी समझा जाना चाहिए। नारायण या कृष्ण की समता कोई भी नहीं कर सकता। कृष्ण ही नारायण है, नारायण ही कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण आदि नारायण है। कृष्ण को स्वयं ब्रह्मा नारायणस्त्वम नहीं सर्वदेही नाम कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है कि तुम नारायण भी हो, तुम आदि नारायण भी हो। काल के अनेक सहायक हैं, यथा स्वभाव संस्कार काम कर्म तथा गुण। स्वभाव भौतिक गुणों के मेल के अनुसार बनता है। कारणम गुणसंगस्य सदसद योनि जन्मसु। सत तथा असत स्वभाव का निर्माण विभिन्न गुणों सत्व गुण रजोगुण तथा तमोगुण के मेल से होता है। हमें क्रमशः सत्वगुण प्राप्त करना चाहिए, जिससे दो निम्न गुणों से बचा जा सके। यदि हम श्रीमद् भागवत का नित्य मनन करें और कृष्ण के कार्यकलापों को सुने तो ऐसा हो सकता है। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। श्रीमद् भागवत में वर्णित कृष्ण की पूतना संबंध लीला से लेकर सारी लीलाएं दिव्य हैं। अतएव श्रीमद् भागवत पर विचार विमर्श करने तथा इसका श्रवण करने से रजोगुण तथा तमोगुण का दमन हो जाता है और एकमात्र सत्वगुण बचा रहता है। तब रजो तथा तमोगुण हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। इसलिए वर्णाश्रम धर्म अनिवार्य है, क्योंकि इससे लोग सत्वगुण प्राप्त कर सकते हैं। तदा रजस्तमो भाव कामलो भात्यश्चये। तमोगुण या रजोगुण काम तथा लोभ को बढ़ाने वाले हैं, जिससे जीव इस तरह बंध जाते हैं कि उसे अनेकानेक रूपों में इस जगत में रहना पड़ता है। यह बहुत ही घातक है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करके मनुष्य को सत्वगुण प्राप्त करना होगा। उसमें शुद्ध तथा स्वच्छ रहने, प्रातःकाल जल्दी उठने तथा मंगल आरती देखने जैसे ब्राह्मण गुणों को विकसित करना होगा। इस तरह सत्वगुण प्राप्त होने पर मनुष्य तमोगुण तथा रजोगुण द्वारा प्रभावित नहीं होता। तदा रजस्तमो भावा कामलोभत्यस्य चेत एते रणाद्विद्धं स्थितं सत्वे प्रसिद्धति। इस शुद्धि का सुअवसर मानव जीवन का विशेष अंग है। दूसरे जीवनों में यह संभव नहीं। ऐसी शुद्धि राधा कृष्ण का भजन द्वारा ही आसानी से प्राप्त की जा सकती है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, हरि हरि फले जन्म गुआइनु, जिसका अर्थ है कि जब तक राधा कृष्ण की पूजा नहीं की जाती, यह मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनत्याशु वैराग्यम। वासुदेव की सेवा में लगने पर मनुष्य को इस भौतिक जीवन से शीघ्र ही विरक्ति हो जाती है। उदाहरणार्थ कृष्ण भावना भावित आंदोलन के सदस्य वासुदेव भक्ति में लगे रहने से तुरंत ही अच्छे वैष्णव बन जाते हैं। यहाँ तक कि लोगों को यह देखकर आश्चर्य होता है कि म्लेच्छ तथा यवन इस अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। ये वासुदेव भक्ति से ही संभव है, किंतु यदि हम इस मनुष्य जीवन में सत्व गुण प्राप्त नहीं कर पाते तो जैसा कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हरि हरि विफल जन्म वायन, तो मनुष्य जीवन को प्राप्त करने से कोई लाभ नहीं है। श्री वीर राघव आचार्य की टीका है कि इस श्लोक के प्रथम पद में उल्लिखित एक एक बात भगवत बंधन के कारण है। काल प्रकृति के गुणों को शुद्ध करता है और स्वभाव इन गुणों के मेल का प्रतिफल होता है, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं भक्त सने वास, यदि भक्तों की संगति की जाती है तो मनुष्य का स्वभाव बदल जाता है। हमारा कृष्ण भावना भावित आंदोलन लोगों को सत्संग गति प्रदान करने के हेतु है, जिससे यह परिवर्तन आ सके। और हम देख रहे हैं कि इस विधि से सारे विश्व के लोग धीरे धीरे भक्त बन रहे हैं। जहाँ तक संस्कार का संबंध है, यह अच्छी संगति से संभव है, क्योंकि अच्छी संगति से अच्छी आदतें बनती है और आदत ही द्वितीय स्वभाव बन जाता है। इसलिए भक्त सनेवास, लोगों को भक्तों के साथ रहने का अवसर मिलना चाहिए, तभी उनकी आदतें बदलेंगी। मनुष्य जीवन में यह अवसर मिलता है, किंतु नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं हरि हरि विफले जन्म गोआइनो, यदि लोग इस अवसर का लाभ उठाने में विफल रहते हैं तो उनका मनुष्य जीवन व्यर्थ जाता है। इसलिए मानव समाज को नीचे जाने से बचाने का और लोगों को वास्तव में ऊपर उठाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक काम और कर्म की बात है, यदि मनुष्य अपने को भक्ति में लगाया है तो उसका स्वभाव इंद्रिय भोग में अपने को लगाने से बने स्वभाव की अपेक्षा भिन्न होता है। इसका परिणाम भी निस्संदेह होता है। मनुष्य को विभिन्न स्वभाव की संगति के अनुसार ही विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। कारणम कुरु संगस्य सदस्य योनि जन्मसु, इसलिए हमें अच्छी संगति, भक्तों की संगति खोजनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। मनुष्य की पहचान उसकी संगति से होती है। यदि मनुष्य को भक्तों की संगति में रहने का अवसर मिलता है तो वह ज्ञान का अनुशीलन करने में समर्थ होता है और उसका चरित्र अथवा स्वभाव भी उसी के अनुसार उसके स्थायी लाभ के लिए बदल जाता है। श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनम शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामाप्रदं देवं अवधूताशिरोमणिं आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाम्ब दिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। नमो महामदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिष्वे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुकदेव गोस्वामी, अघासुर की मृत्यु कैसे होती है इसका वर्णन महाराज परीक्षित या वहां पर उपस्थित सभागणों के सामने करते हैं। और भगवान की लीला का विशिष्ट ऐसा होता था कि लीला जैसी समाप्त हो जाती थी तो ग्वाल बाल जो होते थे वे जाकर अपने अपने घरों में या ब्रज में जाकर भगवान की लीला को गाते थे, अपने माता पिता से कहते थे। इस तरह भागवत के प्रथम कथाकार तो ग्वाल बाल हुए, प्रथम भागवत तो ग्वाल बालों ने भगवान की लीला। तब कथा के क्रम आगासों की कथा के क्रम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आगासों का वध तो एक साल हुआ, लेकिन उस आगासों के वध की घटना को ठीक एक साल के बाद बच्चों ने अपने माता पिता को या सबको ब्रजवासियों को बताया। और महाराज परीक्षित ये सुनते हैं कि ये ऐसी कैसी विचित्र घटना हो गई कि भाई एक साल का अंतर कैसे हो गया इस घटना में। अक्सर तो ऐसे होता था कि सुबह वध दोपहर के समय वध कर दिया, शाम के समय घर पहुंचते तुरंत माँ माँ कृष्ण ने आज ये कर दिया, आज कृष्ण ने बकासुर का वध कर दिया, कृष्ण ने ये कर दिया, कृष्ण ने वो कर दिया, तो इस तरह से बताया करते थे। लेकिन यहाँ पर महाराज परीक्षित को यह आश्चर्य हो रहा है कि एक साल का क्या क्या हो गया। निश्चित रूप से इसमें कोई रहस्य की रहस्य वाली घटना है। तो वे अपने गुरु शुकदेव गोस्वामी के चरण कमलों में विनित प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप कृपा करके इस रहस्य का उद्घाटन कर देंगे तो आने वाले भविष्य में लोगों की श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण में और बढ़ेगी, उनका प्रेम और बढ़ेगा। निश्चित रूप से इस घटना में कोई ऐसे दिव्य रहस्य है जिसको मैं सुनना चाहता हूं, तो आप कृपा करके मुझे बताइए। कोई भी गुरु यदि इस तरह से जिज्ञासा सुनता है शिष्य के मुख से तो उन्हें गर्व होता है कि कैसे ऐसा शिष्य होना चाहिए कि जो भगवान के संबंध में मुझे पूछे कि किस तरह से मैं आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ूं। इस तरह का जो प्रश्न होता है यदि वो गुरु सुनते हैं शिष्य के मुख से तो उन्हें कृतज्ञता होती है, तो शिष्य बनाकर योग्य मेरे योग्य शिष्य है, भगवान से कैसे जुड़ना है इसके विषय में जिज्ञासा कर रहे हैं। तो महाराज परीक्षित का यह प्रश्न सुनकर सुखदेव गोस्वामी को प्रचंड सुख हुआ और उन्होंने महाराज परीक्षित की तारीफ करना चालू कर दिया, उनके गुणों को गाना चालू कर दिया। कहा कि तुम्हारे जैसे रसिक भक्त उनका जो वाणी है, उनकी जो वाणी है, उनके जो कान है, उनका जो मन है, वो केवल भगवान की लीलामृत को सुनने के लिए ही है। तुम्हारे जैसे रसिक भक्त कभी संसार के तुच्छ भोगों को सुनने की इच्छा नहीं रखते। तुम्हारी ये लालसा वैसी है जैसे संसार में जो कामी पुरुष होते हैं वे स्त्री चर्चा में जैसे आनंद लेते हैं ना। अभी शुद्ध को सुनी तुलना कर रहे हैं, स्त्री चर्चा की तुलना कर रहे हैं, उनको और कोई उदाहरण नहीं मिला, इसलिए उन्होंने स्त्री ऐसी परीक्षित महाराज की लालसा की तुलना इस भौतिक जगत के स्त्री चर्चा में लुप्त लोगों से की है। वास्तव में ये जो स्त्री चर्चा में स्त्रियों के संग से ज्यादा स्त्री की चर्चा भयानक है। स्त्रियों की चर्चा से करते करते या स्त्रियां पुरुषों की चर्चा करते करते अपना जीवन इस तरह से व्यतीत करती है कि और उनकी जो आसक्ति रहती बढ़ जाती है दिन प्रतिदिन। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि महाराज परीक्षित आपकी आसक्ति वैसे ही है कृष्ण में, इतने लालायित हैं आप कृष्ण कथा सुनने के लिए कि जैसा एक कर्मी व्यक्ति स्त्रियों की चर्चा करने और सुनने के लालायित रहता है, उनका यह स्वभाव होता है, तुम्हारे ऐसे रसिक भक्तों का यह स्वभाव होता है कि क्षण प्रतिक्षण भगवान की लीलाओं को सुनकर एक अद्भुत पूर्व आनंद लेते रहते हैं। अगर एक ही कथा को बारंबार सुनते हैं तो उसमें तुम्हारे ऐसे भक्तों को अलग अलग रस मिलता है। वास्तव में श्रीमद् भागवत पर वैष्णव आचार्यों की बहुत टीकाएं हैं, अगर उसको अलग अलग टीकाओं के माध्यम से पढ़ा जाए तो एक एक कथा हम लोग अलग अलग आचार्यों के लीला स्मृति के उन्होंने जो उनको जो लीला स्मृति हुई है और उनके माध्यम से उन्होंने जो लिखा हुआ है तो उनके एंगल से हम लोग समझ सकते हैं। अलग 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 तरीकों से हम श्रीमद् भागवत के भगवान के चरित्र को समझा जा सकता है। और ऊपर ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरह से भागवत पढ़ते हैं, भागवत के रसिक लोग जिनको इस संसार के भोगों की लालसा, संसार के विषयों से उठ चुके हैं, और जिनको कृष्ण कथामृत सुनने की लालसा होती है, ऐसे लोग भगवान के कथाओं को बारंबार 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 सुनना पसंद करते हैं। परीक्षित, यद्यपि यह लीला रहस्यमयी है, फिर भी मैं तुम्हें सुनाऊंगा, क्योंकि दयालु आचार्यगण अपने प्रेमी शिष्यों को गुप्त से गुप्त रहस्य बताया करते हैं। मैं तुमसे प्रचंड मात्रा में संतुष्ट हूं। कथा करने वालों का उत्साह तब बढ़ता है जब उनको दिखता है कि जो कथा सुनने वाले लोग हैं वो लोग ध्यान से कथा सुन रहे हैं और बारंबार बीच में प्रश्न करते हैं। श्रीमद् भागवत प्रश्न उत्तर है। शुकदेव गोस्वामी प्रश्न, महाराज परीक्षित प्रश्न पूछते हैं, शुकदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं। फिर शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछते हैं, शुकदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं। विदुर जी प्रश्न पूछते हैं और मैत्रेय जी उत्तर देते हैं। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं, नारद जी उत्तर देते हैं और रघुगण प्रश्न पूछता है। जड़ भरत जी ने तो व्रत ले लेते, किसी से बात नहीं करेंगे। ऐसा व्रत लेकर बैठे थे जड़ भरत जी कि उनको थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना था। एक हरिण के लिए उनका दूसरा ध्येय था। वे जानते थे लेकिन जानते थे उनको राजर्षि भरत थे, जानते थे कि वो हरिण बने थे और अभी फिर उनको ये शरीर मिला हुआ है, तो उन्होंने अपने आप को पत्थर जैसे बना लिया था, जड़ बना लिया था और किसी से कोई चर्चा नहीं करते थे। लेकिन राजा रघुवंश जैसा योग्य पात्र मिलने पर जड़ भरत जैसा व्यक्ति भी बोलने लगता है। जड़ भरत जैसा व्यक्ति जब लगता है योग्य पात्र मिल गया है, उसको समझ कृष्ण कथा सुना देता है और उसका उद्धार कर देता है। तो परीक्षित, मैं तुम्हें इस रहस्य का उद्घाटन करूंगा तुम्हारे सामने। परीक्षित, तुमसे तो कह ही चुका हूं कि अघासुर का वध होने के बाद ग्वाल बाल और भगवान एकत्रित यमुना के पुलिन पर विहार करने लगे और एक बहुत ही रमणीय स्थान प्राप्त कर, जहां पर उनको एक सरोवर मिला, जहां पर सुंदर सुंदर कमल खिले हुए थे, वहां पर घोड़े जो है वो गुंजार कर रहे थे, जहां पर सुंदर सुंदर पक्षियों की आवाजें आ रही थी और वातावरण इतना सुंदर था कि भगवान ने निर्णय किया कि आज हम सब यहीं बैठकर अपना भोजन कर लेंगे। तो भोजन करने की पद्धति बड़ी विचित्र होती थी। सारे जितने ग्वालबाल थे वो सब उन सब के बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठते थे और सारे ग्वालबालों को यही लगता था कि भगवान मात्र एक तरफ देख रहे हैं। ये भगवान की भगवत्ता है। इतने हजारों लाखों ग्वालबाल बैठे हुए हैं, भगवान तो सेंटर में है, लेकिन इन सबको लगता यही था कि श्री कृष्ण मात्र मेरी तरफ देख रहे हैं और श्री कृष्ण मात्र मेरे से व्यवहार कर रहे हैं। तो वे कभी कभी अपने थाली में जो भोजन आता है कि कृष्ण ये बहुत बढ़िया है, इसको तुम खा लो, तो कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती थी कि वो मुंह में चला जाता था और वो कहते थे कृष्ण ये तो अद्भुत है, अच्छा अद्भुत है, तो कृष्ण आते तो उसका गला दबा देते थे और अपना मुंह उसको लगाकर उसके गले का जो उसके मुंह में जो निवाला होता उसको खा लेते थे। मुझे वाह, ये तो वास्तव में अमृत है। तो इस तरह से हरकतें जब भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बालों से करते थे, एक साधारण मानव जैसी हरकतें थी और ये सारे देवता लोग देखते थे। कौन देवता लोग? जो देवता लोग प्रार्थना करने गए थे जेल, वो क्षीरोदक्षय सागर के पास कि प्रभु आप आइए, और जेल में प्रार्थना करने गए थे, प्रभु धन्यवाद आप आ गए, उनकी मति चकरा जाती है जब वे देखते हैं कि ये सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक सच्चिदानंद पर ब्रह्म, ये ग्वाल वालों का झूठन खाते हैं, तभी इनकी माथा चकरा जाता है, इंद्र परेशान हो जाते हैं कि ये क्या है, कौन है भाई, ये भगवान ही है कि नहीं। तो जब ऐसी स्थिति में वे थे और देवता लोग सब अचंभित हो रहे थे, तो ब्रह्मा जी भी देख रहे थे नजारे। ब्रह्मा जी एक तरफ देख रहे थे कि अघासुर की डेड बॉडी है और दूसरी तरफ ये देख रहे थे कि ये ये श्री कृष्ण जिन्होंने अगासुर जैसे महा राक्षस का वध किया है उसकी स्थिति उसकी दशा को देखिए, ये कोई भगवान है? अब ब्रह्मा जी विचार करते हैं थोड़ी परीक्षा लेनी चाहिए। इसमें तो आचार्य के दो मत है, एक आचार्य कुछ आचार्यों का मानना है कि ब्रह्मा जी ने भगवान की भगवान को परीक्षा लेने के लिए कि वास्तव में भगवान है कि नहीं इसके लिए उन्होंने ग्वाल बालों को चुराया। कुछ आचार्यों का ये मानना है कि वो ब्रह्मा जी देखना चाहते थे कि भगवान के साथ थोड़ा मैं ट्रिक करना चाहता हूँ, मेरे स्वामी है मेरे प्रभु है, थोड़ा देखता हूँ थोड़ा उनकी उनकी थोड़ा और लीला का विस्तार हो जाएगा, ये सारे जो ब्रह्म ये जो देवता आदि लोग ये सब चकित हो रहे हैं। तो कुछ लोगों की ये धारणा है आचार्यों की ये देवताओं का संभ्रम दूर करने के लिए थोड़ी मैं ऐसी कुछ कार्य करता हूँ जिससे मेरी प्रभु की लीला का और विस्तार हो जाए, उनको लोग ठीक से समझ सके। तो दो मत है, लेकिन जो कुछ भी हो ब्रह्मा जी भागवत में सुखदेव गोस्वामी ये वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा जी का माता चकरा गया था, ब्रह्मा जी पूरे परेशान हो गए थे ये क्या है। तो उन्होंने सोचा कि चलो क्यों ना इनके ग्वाल बालों को और बछड़ों को चुरा लो और फिर देखते तमाशा क्या करना चाहते हैं, क्या करता है कृष्ण। तो उन्होंने बछड़ों ने क्या किया था, जब प्रसाद के लोग सब बैठे हुए थे उन्होंने अपने सारे बछड़ों को भेज दिया था जंगल में हरी हरी घास को चरने के लिए, लेकिन इतनी आगे हरी हरी घास को चरते चरते जो बछड़े थे इतने आगे चले गए, इतने जंगल के गहरे वन में इस तरह से अंदर चले गए कि इनको इन लोग इन सारे बछड़ों को सारे बच्चों को बछड़े दिखाई नहीं दे रहे थे। तब सारे बच्चे चिंतित हो गए और कहे कृष्ण हमारे जो बछड़े थे वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो क्या करना, हम लोग सब पहले भोजन यही छोड़ देते हैं और हम लोग पहले उनको ढूंढ कर लेकर आते हैं। तो कृष्ण बोले कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग अपना भोजन कंटिन्यू कीजिए, प्रसाद खाते रहिए, मैं जाकर लेकर आता हूँ। तो श्री कृष्ण एक हाथ में दही भात एक हाथ में दही भात का मटका, दूसरे हाथ में हाथों उंगलियों के बीच में अलग अलग आचार, आंवले का आम का नींबू का इस तरह से अलग अलग आचार लेकर भगवान श्री कृष्ण उड़ गए और एक हाथ से ऐसे भात खाते थे और बीच बीच में ऐसे उंगलियों को चाटते थे। तो इस तरह से ऐसे सब और दृश्य देख के इन लोगों का माथा और चकरा था देवताओं का और वे खोजते खोजते खाते खाते खोजते खोजते वे चल पड़े और निकल गए बछड़ों को खोजने के लिए, और बछड़े तो गायब, बछड़े तो है नहीं वहां पर। जब लौट कर आते हैं यमुना के पुलिन पे तो बच्चे भी गायब। अब भगवान विचार करते कि ये किसकी करतूत है, तो भगवान को दिखाई देता कि ये मेरे प्रथम सुपुत्र ही झोरी ने इस ब्रह्मा जी की करतूत है। तो भगवान विचार करते कि अब क्या किया, अब कैसे क्या किया जाए, अब मैं चाहूं तो ब्रह्मा ने जो किडनैप किया है मेरे मित्रों को बछड़ों को उनको एक क्षण में यहां पर लेकर आ सकता हूं, लेकिन उससे ब्रह्मा को या अन्य सारे देवताओं को क्या मैसेज संदेश क्या मिलेगा। इन देवताओं को या ब्रह्मा जी को बताना आवश्यक है कि आई एम द ओरिजिनल पर्सन, मेरी माया के तुम लोग अधीन हो, अपनी माया का प्रभाव उस पर चलाने का प्रयास मत करो, माया दक्षिण है प्रकृति मेरी दासी है आपकी नहीं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी को सबक सिखाने के लिए भगवान ने अपने आप को विस्तारित करना चालू किया। अब जितने सारे हजारों लाखों ग्वालवाल थे, जितने सारे हजारों लाखों बछड़े थे, भगवान ने अपने आप को एग्जैक्ट उन्हीं जैसे ही बना दिया, उनके जैसे अपने आप को बना दिया, उनका जैसे बाल थे, उनका जैसे स्वभाव था, उनके जैसे केश थे, जैसे अंग था, जैसे शरीर का ढांचा था, भगवान ने अपने आप को ठीक उसी तरह से अपने आप को विस्तारित किया। उसमें छोटे छोटे बछड़े थे, बछड़ों के शरीर पर अलग अलग प्रकार के दाग होते हैं अलग अलग, तो भगवान बिल्कुल वैसे ही बन गए। और शाम होते होते भगवान बांसुरी बजाते हुए वृंदावन में प्रवेश करते हैं, अपने घर में प्रवेश करते हैं।
अब घर वालों घर वालों वृंदावन की स्थिति ऐसी थी कि कृष्ण ही सर्व आकर्षक होते थे। खैर अपने पुत्रों से प्रेम होता था लेकिन उतना प्रेम नहीं होता था जितना कृष्ण के साथ उन लोगों का प्रेम था। श्री कृष्ण उन सारे उन लोगों का चित्त का विषय श्री कृष्ण थे लेकिन अभी उनके चित्त के विषय उनके बच्चे बन गए थे क्योंकि बच्चे श्री कृष्ण बन गए, श्री कृष्ण ही बच्चे के रूप में थे। इसलिए जब सारे ये ग्वाल जब ये सारे ग्वाल बाल अपने अपने माँ के अपने अपने घरों में आए थे तो माताओं ने उनका उस तरह से आलिंगन किया और उस तरह से उनसे प्रेम करने लगे जिस तरह से वे कृष्ण से प्रेम करते थे। और ये स्थिति सिर्फ माताओं के साथ नहीं थी, ये गायों के साथ भी यही स्थिति थी। गायें जितना प्रेम कृष्ण से करते थे वैसा ही प्रेम भी अपने बछड़ों से करने लग गए। अब समस्या ये हुई कि ये जो इस तरह का जो कार्यकलाप था ये एक साल तक चल रहा है। एक साल तक इस तरह से भगवान ने विविध लीलाओं का आस्वादन किया। और ऐसे भगवान जो अपने आप को उन्होंने सभी बच्चों में और सभी बछड़ों में अपने आप को विस्तारित किया है, ऐसे भगवान ने एक साल तक जहां जहां विहार किया वो ब्रजमंडल स्थान है। जिन जिन माताओं की इच्छा थी कि श्री कृष्ण को दूध पिलाए और वो इच्छाएं अपूर्ण होती थी भगवान ने उनको एक साल तक अपने को दूध पिलाने का अवसर दिया। जिन जिन गौओं की इच्छा होती थी कि श्री कृष्ण को दूध पिलाए उन गौओं को भगवान ने बछड़े बनकर उनका दूध का आस्वादन किया। इस तरह से एक साल तक भगवान ने अपने भक्तों का अच्छी तरह से पोषण किया और सबका वृंदावन में एक अद्भुत माहौल था। अब विचार कीजिए एक कृष्ण है लेकिन यहाँ पर सभी हजारों लाखों करोड़ों कृष्ण थे, गायों के रूप में बछड़ों के रूप में बच्चों के रूप में, तो वृंदावन का माहौल बड़ा अद्भुत था। तो ये सब ब्रह्मा जी अपने एक क्षण के लिए मतलब उनका एक क्षण था यहाँ पर एक साल बीत गया था तो उनके एक क्षण के बाद में लौट आए ये विचार करने के लिए कि देखते हैं अब तमाशा क्या हो रहा है। जब सारे बच्चे गायब है सारे बछड़े गायब है तो अब क्या होगा। तो ब्रह्मा जी आते हैं और वहां पर देखते हैं कि सब कुछ एज इट इज चल रहा है। जैसे जैसे पूर्व में भगवान कृष्ण की लीलाएं चल रही थी ठीक वैसे ही अब भी लीलाएं चल रही है। तो ब्रह्मा जी को यह समझ में नहीं आया कि वो जो मैंने किडनैप किए हुए वो सही है, ये जो सामने है वो सही है, कौन सही है, डुप्लीकेट कौन है, ओरिजिनल कौन है। दोनों ओरिजिनल नहीं हो सकते, एक ओरिजिनल है एक डुप्लीकेट है। तो ब्रह्मा जी ने अपने दिव्य दृष्टि से वहां देखा जहां पर उन बछड़ों को छुपा के रखा था, तो देखा तो वहां पर भी वो लोग हैं और फिर से यहां देख रहे यहां पर भी वो लोग हैं। तो इस ब्रह्मा जी अपने माया का प्रभाव भगवान पर दिखाना चाहते थे लेकिन अपने जाल में खुद फंस गए। अब ब्रह्मा जी का माथा चकरा गया और वे विचार इस रहस्य को समझने का प्रयास करने लगा कि ये कैसे हो गया। ब्रह्मा जी हम सबके पिता भगवान के इस दिव्य रहस्य को नहीं समझ पा रहे क्योंकि वे अपने बल पर भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान की कृपा के आधार पर ही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है, अपने बल कर समझ में जाएंगे तो भगवान के पास लिखा रहता है ऑल राइट रिजर्व। वे अपने आप को सब किसी को नहीं बताते, जो उनकी कृपा पर आश्रित रहता है जो उनके भक्तों का आश्रय ग्रहण करता है ऐसे भक्तों को ही वो अपने आप को सौंपते हैं। तो यहां पर ब्रह्मा जी जब ब्रह्मा जी की ये चिंता बढ़ रही थी और भगवान समझ रहे थे तो भगवान ने अपना वास्तविक स्वरूप दिखा दिया। जितने सारे बछड़े थे जितने सारे ग्वाल बाल थे भगवान ने ब्रह्मा जी को दिखा दिया कि ये सारे जो है विष्णु स्वरूप है और सब एक ब्रह्मा जी के सामने वहां पर हजारों लाखों करोड़ों भगव विष्णु स्वरूप रूप में भगवान प्रकट हो गए और भगवान देख रहे थे ब्रह्मा जी देख रहे थे कि हरे कृष्ण स्वरूप के चरणों में शिव ब्रह्मा देवता लोग उनकी पूजा कर रहे हैं और अलग अलग ब्रह्माओं को देख रहे हैं। अब ब्रह्मा जी का माथा चकरा गया कि ये क्या है, मुझे तो लगा था कि मैं ही अकेला ब्रह्मा हूं, ये चार ये आठ मुख वाले ब्रह्मा, दस मुख वाले ब्रह्मा, पचास मुख वाले ब्रह्मा, लाख मुख वाले ब्रह्मा, अरे ये सब क्या है, मुझे लगा था बस मैं ही एक भगवान का एकमात्र मैं ही ब्रह्मा हूं और उनका उनका सृष्टि का इंचार्ज मैं ही हूं, ठीक है मेरे ऊपर वो है लेकिन आई एम द ओनली वन, इस तरह से अहंकार हो गया था ब्रह्मा। लेकिन जब ये दृश्य उन्होंने देखा कि हरेक विष्णु स्वरूप में अलग अलग ब्रह्मा, अलग अलग शिव, अलग अलग देवता, तब ब्रह्मा जी समझ गए। ब्रह्मा संहिता का श्लोक याद आ गया उनको, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदे सर्व कारणम कारणम। अब समझ में आ गया कि ये सारे कारणों के कारण ये हैं। तब ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं, उसके बाद उनके चरणों में आके माफी मांगते हैं और ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। तो ये है ब्रह्म विमोहन लीला जिसमें ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं, विमोहित हो जाते हैं। अब विचार कहते हैं कि एक इस सृष्टि का सबसे बड़ा व्यक्ति ब्रह्मा जी से बढ़कर तो कोई नहीं है, तो ऐसे ब्रह्मा जी भगवान को समझने में डिफिकल्टी महसूस करते हैं, कठिनाई महसूस करते हैं। तो हमारे जैसे बद्ध जीवों की क्या दशा है, हम लोग भी यदि अपने बल पर भगवान को समझने का प्रयास करते हैं तो ये असंभव बात है। लेकिन यदि किसी प्रामाणिक गुरु के सहायता, प्रामाणिक साधुओं के सहायता में, किसी प्रामाणिक गुरु के सहायता से यदि हम लोग कृष्ण को समझने का प्रयास करें ना, तो वो आसानी से समझ सकता है। लेकिन उसके लिए दो तरह के गुरु की आवश्यकता है, एक तो ऐसे महाजनों के मुख से कथा का श्रवण करना, इसलिए उनकी संगति, इसलिए उनकी संगति आवश्यक है, महाजनों की संगति बहुत आवश्यक है, ठीक है भक्तों की संगति आवश्यक है, हम लोग एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, सहायता करते हैं दूसरे की। लेकिन जो भगवान के महाभागवत महामुनि प्रेमी भक्त है, जो लोग भगवान को 2400 घंटा स्मरण करते हैं, एक क्षण के लिए भी वो लोग कृष्ण को नहीं छोड़ सकते, एक क्षण के लिए भी वो लोग कृष्ण का चिंतन नहीं छोड़ सकते, ऐसे महामुनियों के संग में आने से हम लोग को उद्धार हो सकता है। ग्रहे श्वावस्थितो राजन क्रिया कुलीन सुचित वासुदेवार्पणम साक्षात उपासित महामुनि। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंध में कहा गया है, नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से कि उपासित महामुनि महामुनियों के संग में बैठिए, उपासित जाके बैठिए उनकी संगति में और उनसे कथा श्रवण कीजिए, उनसे कथा श्रवण करके कृष्ण कथा करेंगे तब जाकर हम लोग भगवान के बारे में समझना चालू कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और लेकिन वो जो व्यक्ति जो कथा सुन रहा है उसका भाव कैसे होना चाहिए, वो नम्र होना चाहिए, एक योग्य पात्र होना चाहिए। वो अगर योग्य पात्र नहीं है तो साधु लोग कितना भी प्रवचन क्यों ना करें, उसके समझ में कुछ नहीं आने वाला। हमें योग्य पात्र बनना पड़ेगा और योग्य पात्रता है नम्रता। यदि हम लोग नम्र है तो ही हमें वास्तव में साधु सामने बैठे हुए हैं, वो कृष्ण कथा कर रहे हैं लेकिन हम लोग श्रवण नहीं कर पाएंगे। यदि हम लोग अहंकार में है कि हाँ अरे क्या बता रहा है ये तो सब मुझे मालूम है, साधु के मुख से सुनने में और बाहर के साधारण लोगों से सुनने में अंतर है। साधु जो साधु होते महाजन होते हैं उन्होंने वो भगवान को बंदी बना के रखे हुए अपने हृदय में श्री कृष्ण को, इसलिए ऐसे साधुओं के मुख से कृष्ण कथा जब श्रवण करते हैं तब हमारे हृदय में जो काम क्रोध मद मोह मद मत्सर आदि है, जो सांसारिक संसार की जो आसक्तियां है वो खत्म हो जाती है और हमारा चित्त श्री कृष्ण के चरण कमलों में लग जाता है, हमारी मति कृष्ण के चरण कमलों में लग जाती है। यहां पर प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं नष्ट प्रायश भद्रेश नित्यम भागवत सेवया। भागवत का नित्य श्रवण, भागवत की तीन प्रकार के सेवा की जाती है। पहले तो भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक तो व्यक्ति भागवत और दूसरा है ग्रंथ भागवत। व्यक्ति भागवत की सेवा करना हम सब भली भांति जानते हैं कि उनके बस आदेशों का पालन करना, साधुओं के गुरुजनों के मात्र आदेशों का पालन करना ये उनकी सेवा है, उनकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना, इससे साधुओं की सेवा हो जाती है। और भागवत की सेवा कैसे होगी? भागवत की सेवा तीन प्रकार से होती है, उसका श्रवण करके, उसका अध्ययन करके और उसका कीर्तन करके। तो श्रीमद् भागवत की इस तरह सेवा करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम लोग अपना पूरा जीवन, जो जीवन है वो भागवत के इर्द गिर्द रखें, भागवत को सुने, भागवत को पढ़े, भागवत का प्रचार करें। इस तरह से हम लोग धीरे धीरे करके श्री कृष्ण को समझ लेंगे, कृष्ण में हमारा प्रेम बढ़ेगा। कैसे प्रेम बढ़ेगा? कि भागवत में भक्तों के दिव्य चरित्र रखे गए हैं, भागवत में चैतन्य चरितामृत में ऐसे ऐसे भक्तों के चरित्र रखे गए हैं जिन्होंने श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। यदि हम लोग ऐसे भक्तों की कथाओं को सुनेंगे, पढ़ेंगे, कीर्तन करेंगे, तो धीरे 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 करके हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो हम उनके जैसे हो जाएंगे, उनके जो सारे दिव्य गुण है वो हमारे अंदर आ जाएंगे। जब तक हम लोग ये कार्य नहीं करेंगे, भागवत के संपर्क में रहेंगे तब भागवत बनेंगे। भगवान के धाम में जाना है तो भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन इत्यादि करना पड़ेगा, उनसे प्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेमी भक्ति वहां जाते हैं। भगवान के धाम में वही लोग जाते हैं जो सुपात्र योग्य पात्र है। कौन है योग्य पात्र? जो भगवान का प्रेमी है, जिसके हृदय में ऐसा प्रेम है भगवान के लिए, जो न धनम न जनम न सुंदरम कविताम अजगदीश काम है ममा जन्मनि जन्मनेश्वरे भवतात् भक्ति रहितो किचोहि। केवल आयतों के प्रेम, उनको भगवान से कुछ नहीं चाहिए। वे लोग सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि तुम्हारे ऐसे रसिक भक्त, उनका यही कार्य है, वाणी से, मन से और हृदय से वे केवल भगवान के गुणों को सुनना ही पसंद करते हैं, और वो कुछ भी पसंद नहीं, संसार से वो कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से जब धारणा हो जाएगी, क्योंकि और सारी संसारिक इच्छाएं खत्म समाप्त हो जाएगी, तब हमारे हृदय में अविचल प्रेम, अकिंचन भक्तों का जैसा है, जैसी हुई गति है श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण के लिए उनके हृदय में जो प्रेम है वो हमारे हृदय में भी आ जाएगा। तो ऐसे साधुओं के संपर्क में हम लोग को आना पड़ेगा। अगर यदि ऐसे साधुओं के संपर्क में आने का हम लोग प्रयास नहीं करेंगे, जो लोग भगवान के प्रेमी भक्त है, तो हमारा क्या स्थिति हो जाएगी? हरी हरी विफले जन्म को आए लो, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिए सुनिए विश्व खाए लो। सब कुछ जानकर, सब कुछ समझकर यदि हम लोग साधु संगति को अवॉइड करेंगे, साधु की संगति में नहीं जाएंगे, तो हमारा उद्धार संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। बिना भगवान के, बिना साधु संघ के जीव कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि हम ये धारणा है कि हम लोग अपने बल पर भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तो इस धारणा को खत्म कर दीजिए, क्योंकि भागवत में सब जगह पर, भागवत के हर एक प्रसंग उठाई, हर एक प्रसंग में एक ही बात कही गई है, साधुओं का संग, साधुओं के संग। सुदामा जी का चरित्र देखिए, वृत्रासुर का चरित्र देखिए, सब जगह सारे सारे भक्त लोग यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे आपके शुद्ध भक्तों की संगति में रखिए। महाराज युधिष्ठिर को देखिए, और कितने सारे भक्तों के चरित्र है। रघुगण को देखिए, रघुगण जब जड़ भरा जैसे सब सारे कथा को श्रवण कर लेता, सारे सिद्धांतों को समझ लेता, वो भी वही कहता है कि मुझे हमेशा आप जैसे महाभागवतों की संगति प्राप्त हो। तो हमारा उद्धार तभी संभव है जब हम साधु संघ के लिए लालाहित रहेंगे। लालाहित, लालसा होनी चाहिए। फिर अब प्रश्न उठेगा, कौन साधु है और हम कैसे देख सकते हैं ये साधु है कि नहीं? यहाँ पे इतने सारे बद्ध जीव घूमते रहते हैं, कैसे समझें कि हम लोग ये साधु है? साधुओं को देखने की दृष्टि चाहिए तो भगवान से प्रार्थना कीजिए। यदि देखने की वास्तव में इच्छा कि कौन साधु है ना, पहले तो सभी वैष्णव सम्माननीय है, सभी वैष्णव आदरणीय, किसी में दोष नहीं देखना चाहिए। और उनमें से भी अगर आपको महाभागवतों के दर्शन करने हैं, उन व्यक्ति को दर्शन करें जो भगवान के धाम से आए हुए हैं, तो आप इतना 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 जान लीजिए कि आप अपने बल पर उन लोगों को नहीं देख सकते। हम लोग ऐसे साधुओं में दोषी देखेंगे, लेकिन यदि हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मुझे आपके अकिंचन भक्तों की संगति करनी है, मुझे आपके शुद्ध भक्तों की संगति करने की लालसा है, उनके उनके सन्मुख बैठकर मुझे कृष्ण आपकी कथाओं को सुनने की इच्छा है, तो इस तरह से जब प्रार्थना करेंगे ना रोज, धीरे धीरे करके जो जो प्रार्थना है वो गाढ़ होती जाएगी और भगवान जानेंगे हाँ चलो वास्तव में इसको मेरे भक्तों की संगति करने की इच्छा है। तब भगवान तो हृदय में स्थित है, वो तो जानते हैं हमारे हृदय में क्या संकल्प उठा हुआ है। तो ऐसे भगवान व्यवस्था करते हैं कि उस जीव को जो प्रार्थना करे उसको भगवान अपने अकिंचन भक्तों के संगति देते हैं, तब उसका उद्धार हो जाता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।